गिनती अध्याय 20। अध्याय 20 में मूसा की बहन मरियम की मृत्यु और कादेश बरने में उसका दफन किया जाना। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग ये कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। गिनती 20 दूसरा और तीसरा पद। परमेश्वर ने जब उन मनुष्यों को जो धूप दान लेकर उसके सन्मुख धूप चढ़ाने गए मार डाला, वो हमें भी मार देता तो भला होता, अब हम प्यास से मर रहे हैं। ये तो मरने का कष्टदायक तरीका है कि हम प्यास से मर जाएं। उन्होंने मूसा के लिए फिर से कठिन समय पैदा कर दिया। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया और मूसा और हारून ने मंडली को इस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर दो बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इसराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वो उनके बीच पवित्र ठहराया गया। गिनती 20 6-13 पद। मूसा लोगों के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि के समान था। परमेश्वर ने कहा, बाहर जाकर चट्टान से बातें कर। याद कीजिए कि पहली बार परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी ले और चट्टान पर मार। नए नियम में हम पढ़ते हैं कि ये चट्टान यीशु था। मूसा ने चट्टान से उन्हें पानी दिया और चट्टान मसीह है। इस तरह वास्तव में चट्टान मसीह का प्रतीक है। उसने कुएं पर उस स्त्री से कहा था, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14 पद। ये चट्टान मसीह ही था, जीवन का जल। जो भी प्यासा हो वो आए, सब सोते के पास आए, जीवन के जल से सेत मेत पिए। मसीह चट्टान है। यहां मसीह को मारा गया ताकि उसमें से हम सब के लिए जीवन का जल बह निकले। चरवाहे को मारा गया, परंतु उसके मार खाने से जीवन का जल बह निकला जो हमारे लिए उद्धार ठहरा। परंतु एक बार मार खाने पर फिर उसे कभी मार खाने की आवश्यकता नहीं। चट्टान पर दूसरी बार वार करने से अर्थ बदल गया, क्योंकि एक बार जब मसीह को मारा गया उसके बाद बोलना ही काफी था, कहने भर से ही हो जाता। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। यूहन्ना 7:37। और तुम्हें जो करना है वो है मांगना। मसीह को फिर से नहीं मारा जाना है, हमें उस पूरी विधि से फिर से नहीं गुजरना होगा, उसे फिर से क्रूस नहीं चढ़ाना होगा। एक बार मरना काफी है। मारी गई चट्टान से पानी बह निकला और अब बोलना काफी है, कहना और तुझे पानी मिल जाएगा। मूसा ने नाराज होकर दृश्य को बदल डाला। वे परमेश्वर के सामने गए। प्रभु ने कहा, बाहर जाकर चट्टान से बात कर, सारी मंडली को बुला और उनके सामने चट्टान से बात कर, और पानी बह निकलेगा कि वे सब पिए और अपने पशुओं को भी पिलाए। मूसा बाहर गया और बोला, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? और चट्टान को मारा। परमेश्वर दयावंत है। पानी बह निकला। परमेश्वर ने कहा, मूसा, तूने मुझे इसराइलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। दूसरे शब्दों में, तूने मुझे गलत तरीके से लोगों के सन्मुख प्रस्तुत किया है। मैं उनसे नाराज नहीं था और चट्टान को मारने की आवश्यकता नहीं थी। तुझे केवल चट्टान से बोलना था। तूने आज्ञा नहीं मानी। तू मुझे पवित्र ठहराने में और प्रस्तुत करने में असफल रहा है। ये तो परमेश्वर का गलत प्रतिनिधित्व था। इसलिए परमेश्वर ने कहा, इस गलत प्रतिनिधित्व के कारण तू इन लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं ले जा पाएगा। मूसा का सपना, जिस उद्देश्य के लिए वो जीवित था, जाता रहा कि वो इन लोगों को प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाएगा, परमेश्वर का उचित प्रतिनिधित्व करने में असफलता। ये वास्तव में बहुत बड़ी सजा है, परंतु इससे स्पष्ट होता है कि परमेश्वर अत्यंत गंभीर है कि हम उसे उचित रूप में प्रस्तुत करें। यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो, यशया 43:10 पर। परंतु मैं यीशु मसीह को अपने चारों ओर किस तरह का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं? लोग मुझे देखकर मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? यीशु मसीह के प्रति वे क्या विचार बना रहे हैं जब वे मुझे देखते हैं? मैं कितने विश्वास से उसे प्रस्तुत करता हूं? इस तरह लोगों का प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाने के सौभाग्य से मूसा वंचित रह गया, क्योंकि उसने परमेश्वर को इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। मूसा ने एदोम के राजा को संदेश भेजा, हम तेरे देश में से होकर जाना चाहते हैं, हम मुख्य मार्ग पर ही चलेंगे, हम तेरे खेतों से कुछ भी ना खाएंगे, पर सीधे तेरे देश में से होकर निकल जाएंगे। वैसे तो हम भाई भाई ही हैं। याद करो, एदोमी तो एसाव के वंशज है। मूसा याकूब के वंश से था, जो जुड़वा भाई थे। इस तरह उनमें नजदीकी संबंध था। हम पर जो जो कष्ट आए हैं, तू जानता होगा, जो हमने मिस्र में उठाए, परंतु अब परमेश्वर हमारे साथ है और हम वापस आकर अपने देश को जा रहे हैं। हमें अपने देश में से होकर निकल जाने दे। एदोम के राजा ने इनकार कर दिया, इसलिए इसराइल की संतान को एदोम देश के बाहर बाहर चारों ओर चक्कर काट कर जाना पड़ा। अध्याय 20 के अंतिम भाग में हम हारून की मृत्यु का अभिलेख पाते हैं। प्रभु ने मूसा से कहा, सो तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल, और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए और जब इसराइल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इसराइल के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। गिनती 20:25-29 पद। और इसराइल की संतान अपनी यात्रा करते रहे। हम देखते हैं कि इसराइल की संतान की यात्रा चलती रही। पुराने नियम का एक बहुत दिलचस्प व्यक्ति जिसे हम गिनती की पुस्तक पढ़ते हुए आगे देखेंगे। अगले अध्ययन में हम इसराइल की संतान के इतिहास के मनोरंजक भाग को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय में कहा गया है, और ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत की नाई ठहरे, ताकि हम बुरी चीजों की कामुकता न सीखें। इसराइल की संतान का इतिहास परमेश्वर ने बचा कर रखा है कि हमारे लिए दृष्टांत ठहरे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाया ना करें, बुरी चीजों की कामना ना करें। जब परमेश्वर आगे जाने को कहता है तो ना रुके और ना हिचके, अविश्वास के साथ पीछे ना हटे, जबकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो आपको भरपूरी और समृद्धि का जीवन देगा। ये सब हमारे लिए उदाहरण ठहरे। काश हम इतिहास के पाठों से सीखें कि हमें लाभ पहुंचे। परमेश्वर आपके साथ हो और आपकी देखभाल करे, उसका हाथ आपका पथ प्रदर्शन करे, आपको आशीष दे और यीशु मसीह के प्रेम में बनाए रखें।